તારીખ 2/5/1995 પૂજ્ય ભાઈ શ્રી શશીભાઈ દ્વારા ભાવનગરમાં થયેલ તત્વચર્ચા સળંગ નંબર 23.
પ્રગટ જ્ઞાન ઉપયોગ ઓર સૂક્ષ્મ જ્ઞાન દોનો એક હી હૈ યા દોનો મેં सूक्ष्म ज्ञान में तो लघु उपयोग दोनों आ जाता है, उतना अंतर का विचार तो कर सकते हैं। अगर अंतर देखना है तो प्रकट ज्ञान उपयोग है, वो उपयोग है, और लब्ध का अंश है वो इससे अलग है। और सूक्ष्म ज्ञान लेवे तो उसमें तो लब्ध उपयोग दोनों का समावेश हो सकता है। ज्ञान का आविर्भाव कैसे होता है? आविर्भाव ज्ञान वेदन भाव भाषण एवं अस्तित्व का ग्रहण, क्या यह सब एक ही है या इनमें अंतर है? आविर्भाव मैंने उत्पन्न होना, आविर्भाव का अर्थ है उत्पन्न होना, सामान्य अर्थ उतना है। और दूसरे दूसरे परिणामों में भी आविर्भाव का शब्द का प्रयोग होता है, तो कभी तारतम्यता की डिग्री बताने के लिए भी होता है। ज्ञान वेदन वो ज्ञान का स्वभाव है, आविर्भाव होना मैंने उत्पन्न होना, भाव भाषण एवं अस्तित्व का ग्रहण वो दोनों एक बात है। भाव भाषण और अस्तित्व का ग्रहण ये दोनों एक ही है, इसमें अंतर नहीं है। किंतु आविर्भाव वेदन उसमें अंतर है। ज्ञान वेदन तो सभी को होता ही है, लेकिन सभी को भाव भाषण नहीं होता है ज्ञान का स्वभाव का। लेकिन भाव भाषण के काल में ज्ञान वेदन से ही भाव भाषण होता है, उतनी बात अवश्य है। तो अर्थ मर्यादित नहीं कर सकते वेदन और आविर्भाव का, कि भाव भाषण और अस्तित्व का ग्रहण में उसको ले ले, इसके सिवा उसका कोई अलग अर्थ नहीं समझे, ऐसा नहीं लेना चाहिए। भाव भाषण अथवा ज्ञान वेदन में अंतर की स्थिति किस प्रकार की होती है? जैसे कि ज्ञान वेदन तो सबको ही है, अबाल गोपाल को अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा अनुभव में आते हैं निरंतर, वो ज्ञान वेदन है, लेकिन वो सबको भाव भाषण तो नहीं है। लेकिन जब भाव भाषण होता है तो ज्ञान वेदन से ही होता है, जिसको वेदन पकड़ने में आता है, सबको वेदन पकड़ने में नहीं आता है। इसलिए वेदन अंश से भाव भाषण होता है, अनुभवांश से भाव भाषण होता है, उतनी बात है। ज्ञान की वेदना हमेशा निर्विकल्प ही होती है, यह कैसे समझ में आए? वो तो वेदना अनुभव गोचर होगी तभी समझ में आएगा, क्योंकि वो वेदना का विषय वेदना से पता चलता है। बिना वेदना केवल समझ से, वितर्क से, तर्क से, विचार से उसका पता नहीं चलता है। निज स्वरूप का निर्धार हुए बिना भाव भाषण नहीं होता एवं भाव भाषण पूर्वक ही स्वरूप का निर्धार होता है, इसमें वास्तविकता क्या है? वही इसकी वास्तविकता है, उसमें वास्तविकता क्या नहीं है वो सवाल हो सकता है, बाकी तो वही तो वास्तविकता है। जैसे अग्नि गर्म है वो इसकी वास्तविकता है, तो अग्नि कैसे गर्म है, अग्नि गर्म है इसमें वास्तविकता कैसे होती है, तो सवाल तो अपने स्थान में नहीं है बराबर। क्योंकि निज स्वरूप का निर्धार हुए बिना, निर्धार कहो भाव भाषण कहो एक ही बात है, निर्धार है वही भाव भाषण है, भाव भाषण है वही निर्धार है, तो वही वास्तविकता है इसकी। भाव भाषण में निर्धार हो ही जाता है, निर्धार होता है तो भाव भाषण पूर्वक ही होता है। जी हाँ, उसी को ही निर्धार कहे। केवल विचार से निर्धार किया वो निर्धार तो सही निर्धार नहीं है, क्योंकि भाव भाषण नहीं है इसलिए। हाँ बस भाव भाषण हुआ तभी स्वरूप का निर्धार हुआ, वहां तक निर्धार नहीं कहना चाहिए, उसमें कुछ कल्पना बनी रहती है। अगर कोई निर्धार करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ कल्पना बनी रहती है, भाव भाषण में ही सही वास्तविक निर्धार होता है, ऐसी परिस्थिति है। एक ही बात है, निर्णय कहो, निर्धार कहो, भाव भाषण कहो, अस्तित्व ग्रहण कहो, स्वरूप निश्चय कहो, स्वरूप की पहचान कहो, स्वरूप का लक्ष्य कहो, सब एक बात है, एक ही बात है। ज्ञान वेदना को वेद लेना ही क्या वास्तव में ज्ञान वेदन है? हाँ, ज्ञान वेदना को वेदन में लेना यही वास्तविक में ज्ञान वेदन है, इसके सिवा ज्ञान वेदन नहीं है। ज्ञान स्वभाव से ही निर्विकल्प, ज्ञान स्वभाव से ही निर्विकल्प अकर्ता आनंदमय और सुखमय है, ऐसे सहज ज्ञान की स्वीकृति ही क्या वास्तव में अस्तित्व का ग्रहण है? ऐसे सहज ज्ञान की स्वीकृति अनुभवांश से होती है तो, अनुभवांश से होती है तो अस्तित्व ग्रहण है, अगर अनुभवांश से नहीं होती है मात्र विचार से होती है तो वहां अस्तित्व का ग्रहण नहीं है। अस्तित्व का ग्रहण वेदन अंश से या अनुभवांश से ही होता है, ऐसा ग्रहण। अस्तित्व का ग्रहण होते ही क्या मार्ग के शुरुआत, वृद्धि एवं पूर्णता सभी कुछ समझ में आ जाता है? अस्तित्व का ग्रहण होते ही मार्ग की शुरुआत तो समझ में आती है, वृद्धि एवं पूर्णता स्वानुभव के काल में समझ में आती है। क्योंकि यहाँ अस्तित्व ग्रहण में स्वरूप निश्चय है, पर्याय का विषय नहीं है, अस्तित्व ग्रहण में द्रव का स्वरूप निश्चय है, द्रव स्वरूप का निश्चय है, पर्याय की बात वहां नहीं है। श्रीमद् जी ने तीन के प्रकार के सम्यक्त्व, आज्ञा सम्यक्त्व, बोध सम्यक्त्व, परमार्थ सम्यक्त्व का निरूपण किया है, कृपया इसे स्पष्ट करें। उसमें वो बात है कि जिसको ज्ञानी पुरुष की पहचान होती है तो उसको ज्ञानी पुरुष की आज्ञा में रहने की रुचि प्रकट होती है, इसलिए उसको आज्ञा सम्यक्त्व या आज्ञा रुचि रूप सम्यक्त्व बोलने में आता है। तो उसमें ज्ञानी के प्रति परमेश्वर बुद्धि आ जाती है, इसलिए उसकी आज्ञा रुचि रूप सम्यक्त्व है, और उसके वचन में पूरी पूरी प्रतीति रहती है, और स्वच्छंद निरोध इसकी भक्ति होती है। ये तीन बात 751 पत्र में लिया है, परफेक्ट बात लिया। बाद में जो बोध सम्यक्त है वो तो बोध बीज ज्ञान, बोध बीज ज्ञान की बात है, बोध ही बीज मिलता है, उसमें स्वरूप की पहचान होती है या स्वरूप निश्चय होता है, तो वहां से स्वरूप का जो लक्ष्य होता है वो छूटता नहीं कभी, ऐसा हो जाता है। उसको सम्यक्त्व का कारण कहे या बोध सम्यक्त्व कहे, एक ही बात है। उसको सम्यक्त्व भी कहते हैं कारण समझ करके, तो सम्यक्त्व का अंगभूत है। और परमार्थ सम्यक्त्व तो निर्विकल्प स्वानुभव के काल में निर्विकल्प प्रतीति होती है, उसको यहाँ परमार्थ संकेत कहने में आता है। तो शुद्धोपयोग के काल में आनंद दशा भी साथ में प्रकट होती है, ऐसा होता है। तो कल जो स्वाध्याय चला था इस पर प्रश्न तो कल ही आए थे, लेकिन कल स्वाध्याय में समय नहीं बचा अपने पास। सम्यक्त्व किसे कहते हैं, मतलब सम्यक्त्व का स्वरूप क्या है, और मोक्ष मार्ग में उसकी भूमिका क्या है, पहला प्रश्न वो है। तो सम्यक्त्व है वो एक आत्मा का गुण है, अति सूक्ष्म गुण है। जैसे आनंद एक गुण है, ऐसा सम्यक्त्व भी एक गुण है। और जब सम्यक्त्व प्रकट होता है तो श्रद्धान भी सम्यक्त्व, ज्ञान भी सम्यक्त्व, आचरण भी सम्यक्त्व, पुरुषार्थ भी सम्यक्त्व, बड़ा सब गुण सर्वगुणांश को सम्यक कहने में आता है। मोक्ष मार्ग में सम्यक्त्व का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो जैसे कल थोड़ा लिया था पंचाध्यायी में से कि विधि क्रमात्, यानी विधि रूप से उसको तो निरूपण कोई नहीं कर सकते। तो सम्यक तो कोई ऐसा गुण है सूक्ष्म कि जिसका विधि रूप से तो निरूपण नहीं कर सकते। लेकिन दूसरे दूसरे गुण के परिणमन से इसका स्वरूप यत्किंचित वक्तव्य है। बहुभाग अव्यक्तव्य होने से विधि से तो उसका निरूपण होना संभव नहीं है। ये 400 नंबर की गाथा में कल हमने देखा था, दोबारा हम पढ़ते हैं उस गाथा को कि सम्यक्त्वं वस्तुतः सूक्ष्मम अस्ति। वस्तु रूप से सम्यक्त्व गुण है वो बहुत सूक्ष्म है। वाचाम अगोचरम, जो वाचा को अगोचर होता है, सर्वथा अगोचर हो तो नाम भी नहीं मिलता। जैसे अनंत गुणों का नाम नहीं मिलता है ऐसा उसका भी नाम नहीं मिलता, लेकिन सर्वथा वाचा गोचर नहीं है ऐसा नहीं है। और वाचा गोचर नहीं है इसलिए ज्ञान गोचर नहीं है ऐसा नहीं है। वरना बात यह हो जाती कि कोई ऐसा नहीं कह सकता कि इसको इसका सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है। कोई ज्ञानी भी दूसरा ज्ञानी के लिए नहीं बोल सकता। एक बड़ा विद्वान ने इस विषय में तर्क लगाया था, जो गुरुदेव के विरोध में लिखते थे, ऐसा एक विद्वान थे, बड़ा विद्वान है, उसने तर्क लगाया था कि गुरुदेव बैंसरी को सम्यक दृष्टि कहते हैं लेकिन हमारा शास्त्र ना बोलता है कि सम्यक्त्वं वस्तुतः सूक्ष्म अस्ति वाचाम अगोचरम। वो तो वाणी से कह नहीं सकते, इसलिए गुरुदेव ये कहता है वो बात गलत है। अरे भाई वाचा गोचर नहीं है लेकिन ज्ञान गोचर नहीं है, ऐसा कहां लिखा है? गुरुदेव के ज्ञान में नहीं आया ऐसी बात कैसे उठाई तुमने? जब हमने ये पत्र पढ़ा तब हमने चर्चा किया था दूसरे मुमुक्षु के साथ कि देखो पंडित लोग क्या करते हैं, कि इस श्लोक का ऐसा अर्थ गठन करते हैं कि वाचाम गोचरम, तो बोला कैसे? अरे सम्यक वैसा नाम ही वाचा गोचर हुआ कि नहीं हुआ, तो सर्वथा वाचा अगोचर है ऐसी बात नहीं है। जैसे कोई सम्यक दृष्टि को पूछो कि आपका आपको आत्मा का आनंद कैसे आया, तो वो क्या बोलेगा कि वाचा में गोचरम, वो वचनातीत आनंद था ऐसा कहेगा। लेकिन सर्वथा वचनातीत आनंद होता तो आनंद शब्द भी नहीं बोला जाता, इसलिए कथनचित वचन गोचर है, बहुभाग वचन अगोचर है, ऐसी बात है। ऐसा सम्यक्त्व के विषय में है। जो वाचा है उसमें बहुत कम आता है वो, लेकिन ज्ञान गोचर बराबर होता है कि सम्यक्त्व किसको कहा जाए। और जिसको सम्यक्त्व ज्ञान में आवे वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। इसलिए सजीवन मूर्ति की पहचान सम्यक दृष्टिपना से होती है, ये बात कृपालु देव ने 504 नंबर के पत्र में कहा कि सर्वज्ञ को भी सर्वज्ञ दृष्टिपणे सम्यक दृष्टिपणे पहचानने का बहुत बड़ा फल है, इसलिए कहा था। वहां ज्ञान शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया वो प्रश्न उठाया है, इसमें भी उठाया है, लेकिन सम्यक्त्व है वो कॉमन है, सम्यक दृष्टि में भी है, मुनिराज में भी है और जिनेन्द्र परमात्मा में भी है। इसलिए पहचान किसी भी एक सजीवन मूर्ति से सम्यक्त्व से होती है, और जब सम्यक्त्व से पहचान होती है तो मिथ्यात्व नहीं रहता है, पहचान करने वाले को मिथ्यात्व चला जाता है। इसलिए ज्ञानी के पहचान करने वाला अवश्य ज्ञानी हो ही जाता है, यही कारण है, यही इसके अंतर परिणति है। पहचान कहां से हुई? सम्यक्त्व से हुई। सम्यक्त्व का शब्दार्थ होता है आत्माभिमुखता। क्या? ये दिशा सूचक शब्द है। हम रूढ़िगत रूप से सम्यक्त्व का अर्थ सच्चा करते हैं कि सच्चापना है, सच्चा ज्ञान वो सम्यक ज्ञान, सच्ची श्रद्धा वो सम्यक श्रद्धा, वो रूढ़ि अर्थ है। वास्तव में जो श्रद्धा आत्माभिमुख हुई, जो ज्ञान आत्माभिमुख हुआ, जो आचरण आत्माभिमुख हुआ है वही सम्यक है, वरना सम्यक नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि देह और आत्मा भिन्न है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? ज्ञान सच्चा है कि झूठा है? तो सम्यक है। क्यों? ज्ञान सच्चा है फिर सम्यक क्यों नहीं? हम जानता है कि आत्मा चेतन स्वरूप ही है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं। तो ज्ञान सम्यक है कि नहीं है? तो झूठा है कि झूठा तो नहीं है? तो सच्चापना और सम्यकपना में अंतर है। जो ज्ञान आत्माभिमुख होता है वही सम्यक है, ऐसा सम्यक लेना। ये चर्चा थोड़ी सूक्ष्म तो पड़ेगी क्योंकि सम्यकत्व का विषय ही सूक्ष्म है, लेकिन बात थोड़ी समझने लायक है और उस पर विचार बहुत कम चलता है, लेकिन प्रश्न आएगा तो थोड़ा विचार भी ऑटोमेटिक चलेगा। तो सम्यक्त्व है वो मोक्ष मार्गी धर्मात्मा का परिणमन में क्या भूमिका अदा करता है कि ये परम रक्षक रक्षण करता है, सभी गुणों को प्रकट होने में, विकास होने में, वृद्धिगत होने में और मोक्ष मार्ग मेंटेन होने में सम्यक तो परम बांधव रूप है और परम रक्षक रूप है। ऐसे सम्यक्तों की भूमिका ऐसी है कि जो आखिर में सिद्ध पद में परिपूर्ण निर्दोषता होने वाली है, आने वाली है, पूरी पूरी निर्दोषता, वो निर्दोषता को गढ़ने में सम्यक्त का रोल है, भूमिका है। मोक्ष मार्ग में भी चारों ओर से कैसे निर्दोषता बनी रहे, यही काम सम्यक करता है। ऐसा सम्यक की ऐसी भूमिका है मोक्ष मार्ग में। निर्दोषता में कषाय रहितता, मलिनता का रहितता, विपर्यास की रहितता, चंचलता की रहितता, परसन्मुखता की रहितता, ये सब निर्दोष परिणाम है। और सहित होते तो सब दोषी कहते हैं। जैसे कि ज्ञान सम्यक है, लेकिन जो उपयोग बाहर गया वो दूषित है। सम्यक ज्ञान का उपयोग, सम्यक ज्ञान का उपयोग आत्मस्वरूप को छोड़ करके, अंतर्मुख की दिशा को छोड़ करके बाहर गया, भले शास्त्र में गया, भगवान के प्रति गया, दूषित हो गया। कौन सा दोष हुआ इसका विचार करे तो, कि एक तो चंचलता आई, तब तो बाहर गया, अपने परमानंद रूप परमात्मा को छोड़ करके बाहर जाने का क्या कारण हुआ, इससे बढ़िया कौन है, कोई चीज है पदार्थ, फिर भी गया ने, दूषित हुआ, चंचलता आई। और जहां चंचलता आई वही मलिनता का कारण है, परसन्मुखता हुई वही दोष है। इसलिए टोडरमल जी ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा कि परसत्ता अवलंबी ज्ञान को कोई भी ज्ञानी मोक्ष मार्ग कहेगा नहीं, ऐसा लिखा है। परसत्ता का अवलंबन क्यों किया उपयोग ने, क्या जरूरत थी उनको, निज सत्ता में उतना भरा है, अनंत गुण का बगीचा है उसमें, और हमें, और उसमें रमने से उसको सुख शांति मिलती है, आनंद मिलता है, फिर भी बाहर क्यों जाता है, कि गया तो उसका दोष है, वो कोई गुण नहीं है, बाहर जाना वो कोई गुण नहीं है, वो दोष है। जाता नहीं है, चला जाता है, कोई अपना जाने के भाव से नहीं जाता है, लेकिन रहा नहीं जाता तो चला जाता है, स्वरूप में रहा नहीं जाता तो चला जाता है। देखो हम आपको एक प्रश्न करते हैं, उसमें बात आपको समझ में आ जाएगी। अभी कैरी की आम की सीजन है, बढ़िया से बढ़िया कैरी मिलती है, हम उसको स्वाद लेने के कारण से खाते हैं, खाते हैं स्वाद भी आता है, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है। फिर हम जिस परमाणु केरे के परमाणु के स्वाद लेते हैं उसको गले के नीचे क्यों ले जाते हैं, गले के पास क्यों ले जाते हैं, स्वाद तो नहीं आएगा ना। ये जो जिह्वा इंद्रिय है उसमें अगले भाग में सूक्ष्म है स्वाद लेने का, इसका असर थोड़ा बहुत एक आध इंच तक रहता है, एक डेढ़ इंच तक, जीभ में एक डेढ़ इंच के आगे जाओ तो इसका असर नहीं है, फिर कोई स्वाद नहीं आएगा। क्यों ले जाते हो, आइसक्रीम मिला, ठंडा भी अच्छा लगता है मीठा भी है, वहां के वहां रखो ना। नहीं रहेगा, ऐसे कोई रखने से रहता है ऐसी बात नहीं है, और रखने की इच्छा से कोई रहता है वो बात भी नहीं है। जितना पुरुषार्थ है यानी जोर है उतना टिकेगा, अधूरा जोर है तो अधूरा टिकेगा, और पूरा जोर आता है तो केवली परमात्मा बाहर निकलते नहीं, तो आनंद में रह जाते हैं। तो साधक दशा में नहीं, अधूरी दशा, अधूरी दशा में तो ऐसा ही होगा, वो अनिवार्य परिस्थिति है।
लेकिन अगर बाहर नहीं जाता एक भी जीव का मुख हो सकता था, अगर ये उपयोग बाहर नहीं जाता क्या नहीं?
तो क्या कि दूसरे जीव का मोक्ष होने के लिए बाहर ले गए क्या?
किस्मत है इसलिए बाहर।
देखो देखिए, सुगानी जी ने बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है कि एक व्यापारी है, वो रेसिडेंशियल एरिया में दुकान खोल करके बैठता है, बाजार में पसंद नहीं करता है, अरे बाजार में है तो दूसरी ब्रांच भी लगाता है, तो क्या बोर्ड में लगाएगा कि अगल बगल के लोगों को सब प्रकार की चीज वस्तु मिलने की सुविधा होने के लिए हमने ये दुकान लगाई है, क्या सही बात है? ये बात सही है क्या?
मेरा प्रश्न का जवाब
मोक्ष अपने कारण से हुआ है, और उपयोग बाहर आया वो भी अपने कारण से आया है। वही तो हम कहने जा रहे थे कि दुकानदार ने दुकान लगाई है वो अपने कारण से, और ग्राहक वहां लेने को आता है उनको अपनी सुविधा के घर से बाहर निकलते ही बगल में दुकान है तो ले लेता है, वो व्यापारी की आजीविका चलाने के लिए नहीं लेता है कि चलो बेचारे का खर्चा निकल जाएगा, अपन नहीं, अपन खरीदी नहीं करेंगे तो बेचारे का क्या होगा। हाँ वो बेचारा समझ के जाता है क्या? हाँ तो दोनों को होता है, और दूसरे जीव का कल्याण होता है उसकी वाणी से, वो अपने कारण से होता है। कोई किसी के लिए कुछ करता है वो बात नहीं है। नहीं, करना धरने का सवाल ही पैदा नहीं होता, कोई करने धरने का ज्ञान दशा में होता ही नहीं, सवाल है।
हाँ
मुमुक्षु की भूमिका में तो सम्यक्त्व होता नहीं, यथार्थता होती है। मुमुक्षु की भूमिका में यथार्थता आती है, सम्यक्त्व नहीं आता है। तो उस सम्यक्त्व का अंश बोल सकते हैं कारण में कार्य का उपचार करके, यथार्थता आती है। तो यथार्थता आती है तो ज्ञान निर्मल होता है, और यथार्थता आती है तो पुरुषार्थ सहज रूप से उठता है, पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता है, और करना पड़े वो पुरुषार्थ का स्वरूप भी नहीं है। जैसे मुमुक्षु दशा में ऐसा मेल है, वैसे ज्ञान दशा में भी, वैसे ज्ञान दशा में भी जो सम्यक्त्व है, उस सम्यक्त्व के कारण से उपयोग बाहर जाता है तो भी मर्यादित रहता है। सौविकल्प दशा में इसकी भूमिका क्या है, ऐसा प्रश्न है इसमें कि ये कंट्रोलिंग वाल है। अज्ञानी का उपयोग बाहर जाएगा तो कितनी हद में बाहर चला जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, बेहद बार जाएगा। जबकि ज्ञानी का उपयोग बेहद बार नहीं जाता है। क्यों लिमिट में रहता है? उपयोग बाहर जाता है तो भिन्नत्व वहां भी रहता है, क्यों? हाँ, भीतर में रहने का अभिप्राय है और सम्यक्त्व साथ में है, हम तो ये कहना चाहते हैं। प्रकरण वो चल रहा है कि सम्यक्त्व साथ में है, इसलिए ये सम्यक्त्व है, वो कंट्रोलिंग वाल है, वो कंट्रोल करता है। जैसे अपने गीजर में कंट्रोलिंग वाल होता है कि पानी बहुत गर्म हो गया, गीजर ऑफ, ऐसा कई प्रकार के जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है, ये आयन करते हैं, उसमें होता है, जगह जगह पे होता है, इंडस्ट्री में होता है, कंट्रोलिंग वाल कंट्रोल कर लेता है कि अपनी मात्रा से बाहर गया, स्विच ऑफ। ऐसे ज्ञानी को उपयोग बाहर जाता है उतना नहीं, उसको भी अनंतानुमंदी को छोड़ करके प्रत्याख्यान वर्णी, अप्रत्याख्यान वर्णी का क्रोधमान माया लोग होता है, होता है कि नहीं होता है? ज्ञानी को क्रोध होता है कि नहीं होता है? तो होता है, अनंतानुमंदी का नहीं होता है, लेकिन क्रोध तो होता है, मान भी होता है, मायाचारी भी होती है, ज्ञानी झूठ भी बोलता है। अनंतानुमंदी का नहीं होता है। ऐसे तो ज्ञानी को सप्तव्यसन नहीं होता, यानी जुआ नहीं खेलता है। लेकिन युधिष्ठिर राजा ने तो जुआ में द्रौपदी को हारा, वो जुआ खेलना की भी लिमिट तो होती है। पैसा को हार जाए, राजपाट को हार जाए, पत्नी को हार जाए, ये कोई चीज है कोई जुआ खेलने की? कोई आउट ऑफ मैनर बात होती है ये तो। वो भी हारे थे, और कैसे थे वो युधिष्ठिर महाराजा? शायिक सम्यक दृष्टि चरम शरीरी तद्भव मोक्षगामी अभी सिद्धालय में विराजमान है। शंका नहीं कर सकते कि उस वक्त वो सम्यक से गिर गए होंगे। आज नहीं, सम्यक दृष्टि को समझना बहुत कठिन है। चित्त की अस्थिरता हो जाए, क्या हो जाए? चित्त की अस्थिरता हो जाए, उनके परिणमन को, ऐसे ऐसा परिणमन होता है, हो सकता है। तो सम्यक दृष्टि को सप्त व्यसन नहीं होता है, असल में तो जुआ का व्यसन नहीं होता है, तो उनको व्यसन नहीं था, उदय आया खेल लिया। व्यसन नहीं होता, उसको छोड़ने में देर नहीं लगी, नाक में से निकाले मैल ऐसे ही निकाल दे दिया, निकाल दिया तो ऐसे सारे संसार को निकाल दिया, हो गए मुनिराज भावलिंगे। शत्रुंजय पर से गए, कालिताना है ना शत्रुंजय, वहां से मोक्ष पधारे हैं युधिष्ठिर भीम अर्जुन तीनों वहां से गए, इसलिए तो उसको सिद्ध क्षेत्र कहते हैं।
0% हो जाता है, आप ऐसे बता देंगे थोड़ा भी कुछ हो सकता है
हैं?
अब तक हम ऐसे मानते थे कि दर्शन नहीं है, 0% हो गया। आप कभी कभी ऐसा बताते, कभी कभी थोड़ा कुछ हो सकता है, आप बोलते
हैं कोई उदय आ गया, उदय में चारित्र मुंह के परिणाम हो जाते हैं, बस बात खत्म, आगे पीछे कोई लेना देना नहीं है, आगे पीछे कोई लेना देना नहीं, उदय भाव आया उसी क्षण, उतना संबंध हुआ क्षणवर्ती, बात खत्म, ना आगे संबंध है न पीछे भी संबंध।
चलते उदय भाव में भी संघर्ष अपना जो बरतता है उसको लोगों ने देना चाहिए।
हाँ, उस वक्त भी सम्यक्त्व था, अगर उनको समझे तो शंका नहीं पड़ेगी, वरना वो कषाय इतना तीव्र है जुआ खेलने का, बहुत तीव्र पाप का परिणाम है। श्रेणिक महाराजा आपघात करके नरक में गए, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे और है आज भी, क्षायिक सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान में ही है, आएगा विकल्प आ जाएगा, हो सकता है। वो डेड बॉडी वो नहीं मानते थे, उनको जो भी कहते थे कि ये तो मुर्दा है वो मानते नहीं थे कि नहीं नहीं तुमको पता नहीं, वो मूर्छित अवस्था में है। आगे भी ऐसा हुआ था, जब राम के रावण के साथ लड़ाई हुई थी ना, तो उनको चोट लग गई थी तो मूर्छित हो गए थे, फिर तो विशल्या को ले आए और उसका स्नान करा करके पानी, उसको लब्धि थी विशल्या के, पानी छाटा, खड़े हो गए, मारो 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 करने लगे, अरे भाई ठहरो ठहरो, अभी युद्ध में नहीं हो तुम, छावनी में हो, घर पे हो। बाद विशल्या के साथ उसका शादी हो जाता है, लेकिन उनको ये मालूम था कि ऐसा आगे हुआ था, जैसे किसी को घर में वाय आती है, मूर्छित अवस्था होती है, हिस्टीरिया होता है, तो घर वाले को पता होता है कि भाई ऐसा इसको हो जाता है, ऐसा उनको लगा था, इसलिए वो नहीं छोड़ते थे, ऐसी बात थी। मुर्दा है और रखना है वो बात नहीं थी, वो बात ऐसी समस्या नहीं थी। वो सौ विकल्पता में वो सम्यक्त्व है, वो विकल्प को कंट्रोल करता है, कषाय को कंट्रोल करता है, पर सन्मुखता को चंचलता को कंट्रोल करता है, और विपर्यास को तो होने ही नहीं देता। सौ विकल्प दशा में विपर्यास को होने नहीं देता। कई लोग पूछते हैं कि भरत बाहुबली राज के लिए लड़ाई क्यों किया, और ज्ञानी कैसे, वो अगर राज के लिए लड़ाई किया तो क्या उदासीनता नहीं थी? ज्ञानी को तो उदासीनता होती है परिग्रह के प्रति, और उसने तो परिग्रह के लिए लड़ाई किया, तो क्या ज्ञानी क्या परिग्रह के लिए लड़ाई करते हैं क्या? कहां किया ने, लेकिन वो चारित्र मोह के परिणाम। लेकिन ज्ञानी कभी तत्व के लिए लड़ाई नहीं करेंगे, देवगुरु शास्त्र के लिए लड़ाई ऐसा उदय नहीं आता है कि कुदेव को सुदेव माने या सुदेव का उत्थापन करे, ऐसा कोई ज्ञानी नहीं होगा, एक भी ज्ञानी नहीं होगा, या नव तत्व में किसी एक तत्व का विपर्यास नहीं होगा, अब दोनों बात अलग अलग है, एक सी बात नहीं है। स्वविकल्प दशा में विप्रयास नहीं होने देता, और निर्विकल्पता में तो सम्यक्त्व का प्रभुत्व बहुत है, और उसी कारण से वो परिणाम को गढ़ता है, ज्ञान के परिणाम को, आचरण के परिणाम को, पुरुषार्थ के परिणाम को इतना गढ़ता है कि बार बार वो निर्विकल्पता को ले आता है। सबके साथ है, हाँ, अनंत तो अनंत गुण के साथ सम्यक है, सभी गुण सम्यक हो गया। ऐसा है कि ज्ञानी रस्सी को सांप जाने तो ज्ञान मिथ्या नहीं होता है, होता है ज्ञान झूठा तो है मां है क्या
मिथ्या नहीं
है, मिथ्या नहीं है क्योंकि सम्यक है साथ में, इसलिए ज्ञान झूठा जरूर है लेकिन मिथ्या नहीं है। ऐसे आचरण में कषाय होता है ज्ञानी को, तीव्र कषाय मंद कषाय दोनों होता है, लेकिन चारित्र मिथ्या नहीं है, है मिथ्या। पाप के परिणाम होते हैं कि नहीं होते हैं ज्ञानी को? होते हैं, होते हैं, व्यापार करते हैं, गृहस्थी चलाते हैं, ये जुआ खेला वो भी पाप के परिणाम है, और लड़ाई किया वो भी पाप के परिणाम है, किंतु चारित्र मिथ्या नहीं है क्योंकि सम्यक तो साथ में है। वो अचारित्र जरूर है, और ऐसे तो अचारित्र पंच महाव्रत के परिणाम भी अचारित्र है, लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं है। उसको चारित्र नहीं कहने से वो अचारित्र जरूर है लेकिन मिथ्या चारित्र नहीं है। ऐसे सम्यक्त्व का जो रोल है वो तो बहुत बड़ा है मोक्ष मार्ग में।
हर परिणाम के साथ में जो सम्यक्त्व बना है, हर परिणाम चाहे उदय का हो उसका, उसके साथ जो सम्यक्त्व बना है उसकी पहचान जीव को आ जाए, ज्ञानी की पहचान।
इसलिए लिखा कृपालु देव कि सर्वज्ञ को भी सम्यक दृष्टिपने पहचानने का अर्थ फल बहुत बड़ा है, यानी वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। तो सर्वज्ञ को केवल ज्ञान के रूप में पहचानने की बात क्यों नहीं लिखा? सम्यक तो क्यों कि पहचान में सम्यक ही होता है, ज्ञानी हो या मुनि हो या भगवान हो जिनेन्द्र परमात्मा, सम्यक से पहचान आ जाता है। सम्यक्त्व से पहचान आ गई तो उसने भगवान को पहचाना और वो ज्ञानी हो जाएगा।
पहचानने का सिर्फ एक ही मीडिया,
एक ही मीडिया,
ज्ञान को नहीं।
हाँ, वो प्रश्न है, अभी वही प्रश्न पर आ रहा हूं मैं कि स्वविकल्पता एवं निर्विकल्पता के काल में ज्ञान को न लेकर सम्यक्त्व को क्यों लिया है? तो ज्ञान में तो कॉमन फैक्टर है ही नहीं। ज्ञानी और मुनि को मति श्रुत होता है और केवली को मति श्रुत होता नहीं, ज्ञान को कैसे लेंगे? आप ही बताएं, तीनों में से किसी एक को कोई पहचाने तो उनको ज्ञानी ज्ञान दशा आ जाती है। तो किन तीनों में कॉमन फैक्टर किसका है? सम्यक्त्व का है, ज्ञान का नहीं है, ज्ञान कॉमन नहीं है। हाँ, अभेद स्वरूप ज्ञान है, वो सजाति की अपेक्षाएं है, जाति की अपेक्षाएं है। तो जाति में दो प्रकार की जाति है, सम्यक और मिथ्या। क्या ज्ञान की सत्ता अपने स्वक्षेत्र प्रमाण है, ज्ञान की गति अभाव और सद्भाव रूप है, ज्ञान का अभाव और ज्ञान का सद्भाव, ज्ञान की जाति सम्यक और मिथ्या है, और ज्ञान की शक्ति स्वपर प्रकाशक। एक ज्ञान के पर्याय को ये चार पहलू से समझो तो आपको कहीं प्रश्न या शंका या असमाधान होने वाला नहीं है। तो यहां आपका ज्ञान का प्रश्न है, जाति अपेक्षा से देखो, बात खत्म। केवल ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है और मति श्रुत ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है, मुनि का और सम्यक दृष्टि का। जाति तो एक ही है, जबकि मति श्रुत है वो केवल नहीं, केवल है वो मति श्रुत नहीं है। ज्ञान तो किसी को बहुत कम भी होता है, मुनि दशा में भी तुष्मास भिन्न पहचाने का कहां से ज्ञान लक्षण में भी जो ज्ञान वेदन है ना वही लक्षण है, अनुभूति वही लक्षण है, स्वसंवेदन सिद्धत्वात्। ज्ञान का लक्षण की चर्चा करते हुए समय सार में लक्षण लक्षण की चर्चा के परिशिष्ट में अमृतचंद्राचार्य ने ज्ञान मात्रस्य, मात्र ज्ञान, अकेला ज्ञान, वेदन रूप ज्ञान, स्वसंवेदन सिद्धत्वात्, ज्ञान का स्वसंवेदन से उसकी सिद्धि मैंने प्राप्ति होती है, स्वभाव पहचाना जाता है, पूरा आत्म स्वभाव, पूरा आत्मा पहचाना जाता है। तो ये पहचानने का स्टेज होता है और वहां यथार्थता आती है। सम्यक्त्व तो अनुभव के काल में होता है, सम्यक्त्व पहचान के काल में नहीं होता है, सम्यक्त्व का कारण वहां पैदा होता है, उतनी सी बात है। फिर उसको सम्यक कहे वो अलग बात होगी। थोड़ी चर्चा सूक्ष्म है लेकिन थोड़ी समझने लायक है। इसलिए ज्ञान को न लेकर सम्यक्त्व को लिया गया है पहचानने में, ज्ञान को नहीं लिया, क्योंकि एक तो ज्ञान कॉमन होता नहीं और एक दूसरी बात होती है कि मुनि होते हुए भी 12वें गुण स्थान तक बहुत जघन्य ज्ञान रह सकता है, किसी को पता ही नहीं चले, बोले ही नहीं, समझा नहीं सके, समझ सके लेकिन समझा नहीं सके, कैसे पता चलेगा कि ज्ञानी है। इसलिए वो लक्षण नहीं है। और प्रश्न है, तीनों सजीवन मूर्ति को पहचानने के लिए ज्ञान को न लेकर के सम्यक्त्व को क्यों लिया गया है? तो ऊपर लिया है कि जबकि सम्यक्त्व तो अति सूक्ष्म है और ज्ञान तो स्थूल, ज्ञान स्थूल है, सम्यक्त्व सूक्ष्म है और ज्ञान स्थूल है, लेकिन ज्ञान में कई प्रकार के अवस्था होती है। किसी अज्ञान अवस्था को बहुत सूक्ष्म ज्ञान होता है, किसी अज्ञानी को 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान होता है, लेकिन वो ज्ञान मिथ्या होता है, इसलिए ज्ञान से कहां से पहचान होगी? वो सब बात करेगा आगम अनुसार करेगा, आगम से विपरीत नहीं करेगा, कैसे पहचानोगे? कोई आगम का प्रवचन करने वाला आगम से विपरीत नहीं बोलता है। हाँ, बिल्कुल विपर्यास नहीं दिखने दिखेगा, तो सम्यक ज्ञान है कि मिथ्या ज्ञान है कैसे पता चलेगा? ज्ञान से नहीं पता चलेगा, सम्यक तो से पहचान चलेगा, पता चलेगा, ऐसी बात है। इसलिए तो लोग भूलते हैं, भुलावे में आ जाते हैं, यही तो कारण है। यथार्थता वाला है, जिसमें अपने में यथार्थता हुई तो इसको सत्य करेगा। परिणमन से परिणमन का मिलान है, हनुमान तर्क का विषय नहीं है सम्यक। तो यहां यथार्थता आई तो अगले के यथार्थता को देख करके उसको पहचान होगी। यथार्थता बहुत सूक्ष्म है, कभी कभी ये बात चलता है कि यथार्थता पर लिखो, बहुत गहरा विषय है और विशाल भी है, जहां तक उसका फ्रेमिंग नहीं हुए तो कलम चलेगी कैसे। हाँ, उत्कृष्ट मुमुक्षु को यथार्थता आती है और वही पहचानता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। और वो यथार्थता में दृढ़ मोक्ष इच्छा होती है, यानी पूर्णता का लक्ष्य तो उसको होता ही है। दूसरा, वो अमलीकरण में आया है तो अनुभव की स्टेज में है। और तीसरा, उसको अंतरात्म वृत्ति प्रकट हुई है, बहिरात्म वृत्ति का अभाव हुआ है और अंतरात्म वृत्ति प्रकट हुई है। तीन बात कृपालु देव ने लिया है। वो मुमुक्षु उत्कृष्ट मुमुक्षु है और वो सम्यक को पहचानेगा और वो सम्यक दृष्टि हो जाएगा। ऐसी बात है। ये यथार्थता वाला पकड़ता है। तो यथार्थता में बहुत सी बातें हैं, लेकिन यथार्थता जो है तो हर गुण के यथार्थता में पांच पहलू हैं। कितने? पांच पहलू मुख्य रूप से हैं। जैसे श्रद्धान, तो श्रद्धान को श्रद्धान की अपेक्षा से देखो, श्रद्धान को ज्ञान की प्रधानता से देखो, श्रद्धान को आचरण की प्रधानता से देखो और श्रद्धान को पुरुषार्थ की प्रधानता से देखो और श्रद्धान को सुख की प्रधानता से देखो। श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, सुख और वीर्य, ये पांच गुण मुख्य हैं। एक गुण को पांचों का रूप है, ऐसे तो एक गुण को अनंत गुण का रूप है, लेकिन अनंत गुण समझ में नहीं आएगा। छद्मस्थ को अनंत गुण समझ में नहीं आता, लेकिन ये पांच गुण है उसकी समझ अपने क्षोभसम अनुसार होती है, सबको एक से नहीं होती। लेकिन पांचों में कॉमन फैक्टर वो है यथार्थता का। फिर से प्रश्न तो अच्छा निकला, हमने सोचा नहीं था इतना, प्रश्न अच्छा निकला कि एक सम्यक श्रद्धा है, उस श्रद्धा को श्रद्धा का पहलू से देखो तो यथार्थ है, उस श्रद्धा को ज्ञान का पहलू से देखो तो यथार्थ है, उस श्रद्धा को आचरण का पहलू से देखो तो यथार्थ है, उस श्रद्धा को पुरुषार्थ का पहलू से देखो तो यथार्थ है, और उस श्रद्धा को सुख का पहलू से देखो तो भी यथार्थ है। ये यथार्थता सब में रहेगी। एक ज्ञान का दृष्टांत ले ले कि भूतार्थ आश्रित नौ तत्व का ज्ञान सम्यक है। समय सार के तेर विगा था, भूतार्थ आश्रित नौ तत्वों का ज्ञान, ज्ञान नहीं है सम्यक्त्व है ऐसा कहा। तो वास्तव में जो ज्ञान है वो तो ज्ञान है, लेकिन श्रद्धा अपेक्षा ही ज्ञान की यथार्थता लिया है वहां। तो श्रद्धा का विषय भूतार्थ है तो ज्ञान का विषय भी भूतार्थ है वहां। इसलिए नव तत्वों का ज्ञान ही है उसका सम्यक वो बोलता है। बाकी तो नव तत्व सभी पंडितों को मालूम है, सबको ज्ञान सम्यक दर्शन हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है? कि भूतार्थ का आश्रय नहीं है, ये भूतार्थ का आश्रय यथार्थता को ले आता है, तो नमों का ज्ञान यथार्थ हो जाता है। बात थोड़ी ज्यादा गहरी है। ऐसे ज्ञान के परिणम में पांचों गुण को लेना, ऐसे आचरण के परिणम में पांचों गुण को लेना, ऐसे पुरुषार्थ के परिणम में पांचों गुण को लेना, और ऐसे सुख के गुण में के परिणम में भी पांचों को लेना। ये पांचों का जो एग्जाम्पल है वो हमने विविक्षा 36 में दिया है। विविक्षा 36 उसमें 25 भेद तो ये है, 5 × 5, पांच गुण का पांचों का जो पहलू है वो, पांच से पांच को गुणांक करेंगे तो 25 भेद हो जाएगा। 2500 पहलू यथार्थ हो गया, 25 के 25 है तो यथार्थ हो गया, हो गया। और इनके द्रव्य गुण पर्याय तीनों भेद यथार्थ हो जाएगा। और पदार्थ की भेदता और अभेदता तीनों में, तीनों आपस में द्रव्य का गुण पर्याय, गुण का द्रव्य गुण और पर्याय का गुण द्रव्य, तीन गुणा 3 × 3 नौ हो गया, 25 × 9 = 34। और भेद और अभेद दोनों यथार्थ हो जाएगा ज्ञान, वो हो गया 36 + 2 = 36। 36 भेद का दृष्टांत दे करके ये विविक्षा 36 वाला पूरा आर्टिकल लिखा है। ऐसा है तत्वानुशीलन में जो बात लेंगे वो बात विस्तार से आएगी, तो अभी तो 2-3 मिनट बाकी है, तो ये बात तो विस्तार से अभी की चर्चा में तो संभव नहीं है, कल की चर्चा में लेंगे, और कल की चर्चा में कल का बाकी का प्रश्न है वो भी ले लेंगे। ठीक है, एक प्रश्न बाकी रह जाता है।